نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, यकीन करें एक अफसोस सा और उदासी सी हो रही है, और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे इन दिनों को उस तरह से नहीं गुजार पाए हैं जैसे गुजारने का हक था। यानी फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, क्योंकि मालूम नहीं है ना कि पता नहीं दोबारा रमज़ान नसीब हो या नहीं हो। ये जो हमारा बीमारियों का आना, हमारे बालों का सफ़ेद होना, हमारी नज़रों का कमज़ोर होना, हमारे हाथों में कहीं जिस्म में जोड़ों में दर्द होना, यही हम सुनते हैं ना एक दूसरे से जब बात करते हैं, और बीमारियों का बार बार चक्कर लगाना, फिर हम दाएं बाएं मौत को सुन रहे हैं, जवानों को भी मरते देख रहे हैं, बूढ़ों को, बीमारों को, इधर जनाजा उठ रहा है, उधर उठ रहा है। तो आज किसी के जनाजे में शरीक है, लेकिन ये सब चीज़ें हमें ज़ुबान हाल से बता रही हैं कि एक मौत का दिन तुम्हारे लिए भी है, मौत पर हक है, ये आनी है और इसकी तैयारी कर लो। और चूंकि सारे साल में वो अजर किसी दिन का भी नहीं हो सकता जैसे रमज़ान के एक दिन का, इसमें इतने फ़ायदे हैं, इसी वजह से ये प्रोग्राम भी आपके लिए रखा गया है, ताकि आप को भूले नहीं ये बात। होता ये है कि हम रमज़ान का स्टार्ट तो बहुत जोशो खरोश से करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम थक जाते हैं ना, थक भी जाते हैं, थोड़ा जोश ठंडा हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमारी छुट्टी कोई नहीं है, आराम कोई नहीं है, अभी मौत आएगी तो आपकी छुट्टी है। फिर अभी ये है कि ना सिर्फ रमज़ान में, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ रमज़ान में इतना कर लें फिर उसके बाद, मैं तो ये कहूँगी सिर्फ रमज़ान में नहीं, अब इंशाल्लाह सारा साल ही सच बोलना है, सिर्फ रमज़ान में नहीं सारा साल ही कुरान का सुनना है पढ़ना है, सिर्फ रमज़ान में नहीं आंखों को हराम से बचाना, सारा साल ही बचाना है, ठीक है, हर हराम से बचना है और हर नेकी की तरफ दौड़ना है। कब तक? मौत तक। फिर जब वो मौत आ गई तो फिर बस छुट्टी ही छुट्टी है, उसके बगैर कोई आराम का दिन नहीं है। तो जितनी जिंदगी रह गई है अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लें कि अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं बस करना, मेरे किसी काम से, मेरी किसी बात से, मेरी किसी नज़र से, किसी चीज़ से भी मेरा रब ना नाराज़ हो। अगर आप जवानी में इस जवानी की कदर करें, अगर आप बुढ़ापे में जा चुके हैं बुढ़ापे की कदर करें कि आपको अल्लाह ने चलो ज़िंदगी तो दी है ना, यानी अपनी ज़िंदगी की कदर पहचाने कि मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ अपने अमालनामे में, अभी वक्त है। आप रोज़ा नहीं भी रख सकती तो और कामों से आप अपना अमालनामा बढ़ा सकती हैं नेकियों में। कब पता नहीं है कि ज़िंदगी का ये चैप्टर क्लोज़ हो जाए, फिर इंसान हाथ मलता रहेगा। या लैतनी लत्तखज़्त मअर रसूली सबीला, काश मैंने अल्लाह के रसूल की बात माननी होती। या कहेगा हाय काश मैंने इसका शैतान का रास्ता इख्तियार ना किया होता, क्योंकि क़यामत के दिन तो इंसान के इतने सारे मुखालिफीन खड़े हो जाएंगे ना, अपने जहाँ पे हाथ पैर मुखालिफ हैं, जहाँ पे अपने रिश्तेदार मुखालिफ हो गए, अपनी औलाद ने भी मांग ली नेकियाँ, वालदैन तक खड़े हो गए और वो तक कहेंगे कि हमें अपनी नेकियों में से हिस्सा दो, तुमने हमारा ये हक मारा था। तो वहाँ पे वहाँ के लिए सोचें फिर, पता नहीं कितन किन किन के हकूक हम मार चुके हैं, हमें तो पता भी नहीं। कितनी नेकियाँ देनी पड़ेंगी इंसान को, कितनी नेकियाँ इंसान की तो इसी में चली जाएंगी। तो उस दिन से छूटना कोई आसान नहीं है, उस दिन से निजात पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत प्लानिंग चाहिए। और ये सिर्फ इंसान ही को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, सलाहियत दी है कि वो कल के लिए प्लान करता है, कल की सोच सकता है, मंसूबा बना सकता है। बाकी चीज़ों में ये चीज़ हिस नहीं है। हाँ ठीक है, अल्लाह ताला ने उनके लिए नेचुरल एक चीज़ रखी हुई है कि वो अपने यानी कुछ खुराक को जमा करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन अदरवाइज उनके अंदर प्लानिंग की चीज़, ये वाली चीज़ जो है ना, किसी और में नहीं, सिर्फ इंसान को अल्लाह ताला ने दी है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो अपने कल के लिए, जो इस ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी है, उसके लिए प्लान करे, खुद को बचाए उस आग से। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। गोया हम आग के किनारे पे खड़े हैं, अपने आप को बचा लो। हम सब के घर में ये स्मोक डिटेक्टर है ना, यहाँ पे तो कोई घर बन ही नहीं सकता इस तरह। फायर अलार्म है, स्मोक डिटेक्टर है, फायर एक्सटिंग्विशर भी पड़े होते हैं। कितना इंतज़ाम है इस आग से बचने के लिए, जो सिर्फ दुनिया की आग है और जिसमें कोई घसीट के डाल नहीं रहा, जिसमें एक फोन कॉल पे कई लोग बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। इसके लिए तो इतने इंतजाम, और वो आग जिसमें फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे होंगे, जिससे कोई बचाने वाला नहीं होगा अगर अल्लाह का फैसला आ गया तो, जिससे कोई छूट नहीं है, जिसमें कोई हमदर्द नहीं है, उससे बचने के लिए हमारे पास कितना इंतजाम है। जिसको देख के जिब्राइल भी रोए, मीकाईल भी रोए, जिसको देख के फरिश्ते बेहोश हो गए जब अल्लाह ने उसको पैदा किया, फिर जब ये ऐलान किया कि तुम्हारे लिए नहीं है, इंसानों के लिए, तो फिर उनको कोई होश हवास दुरुस्त हुए। जिसका एक अंगारा सातों जमीनों के बराबर है, जिसका एक कतरा ज़मीन पर डाल दिया जाए, पूरी ज़मीन की मिठास ख़त्म हो जाएगी, सारा जहान कड़वा हो जाएगा। इसका एक लोटा पानी का मशरिक में रख दें तो मगरिब तक हर चीज़ गल जाएगी। अल्लाहु अकबर, क्या वो आग होगी? सातों समुद्रों का पानी जोश खाने लगेगा, एक लोटा पानी डाल दें तो, कहीं भी डाल दें। जिसका एक पत्थर सारी दुनिया के पहाड़ों पे रख दे ना, सारी दुनिया के पहाड़ मिला लो, उसका एक पत्थर रख दो तो पहाड़ पिघल के स्याह पानी में बदल जाएंगे। और नाफरमान इंसान इन पत्थरों के नीचे दबा हुआ होगा। ये इंसान जो दुनिया की गर्मी नहीं सह सकता, वो आग कैसे बर्दाश्त करेगा, जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो भड़कती भी आग है जो खाल को खींच लेती है। वो खाल खींचने वाली है, उसकी एक चिंगारी बड़े बड़े महल्लात के बराबर है, और उसमें सात हिस्से हैं, सात उसके दरवाजे हैं। उसका सबसे पहला हिस्सा जहन्नुम और सबसे आखिरी हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा हाविया। जब अल्लाह ताला इसको भड़काना चाहता है जहन्नुम को, तो हाविया के ढक्कन को खोल देता है, और समझ लें एक तंदूर है, उसमें से आग निकलती है। इसकी गर्मी से जहन्नुम की आग चीखने लगती है। ये नहीं कि ये सिर्फ काफिरों के लिए जहन्नम बनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी जो लोग कबीरा गुनाह करते हुए मर गए, जिना, शराब, झूठ, कत्ल, सूद, गीबत, किसी का हक मारना, जमीन दबा लेना, नमाज को छोड़ देना, रिश्वत लेना, ये कबीरा गुनाह ही है ना। ये गुनाह किए, मर गए, तोबा नहीं की, तो जहन्नुम में कैद खाना। इसमें हर ऐसे इंसान को अपने अपने गुनाह के मुताबिक डाला जाएगा। कोई गोता खाते ही निकाल दिया जाएगा, कोई हजारों साल इसमें पड़ा रहेगा। और ये ऐसी जगह है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल औलाद को भी डराते हैं। अपनी प्यारी बेटी, अपनी लाडली बेटी फातिमा सामने है तो फरमा रहे हैं, आज मेरे पास एक फरिश्ता आया जो आज से पहले कभी नहीं आया था, मुझे आके खुशखबरी दे दी है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। फिर इनको कहते हैं, ए फातिमा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अपने आप को जहन्नुम से खुद बचाना, मैं नहीं छुड़ा सकता अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो। मन अल्लज़ी यशफ़ा इंदहू इल्ला बिइज़्निही, उसकी इजाजत के बगैर कौन सिफारिश करेगा, कौन छुड़ाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी तभी होगी जब अल्लाह चाहेगा। अपनी फूफी सफिया से फरमाते हैं, ऐ मेरी फूफी सफिया, अपने आप को आग से बचाना, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं नहीं छुड़ा सकता। दो टके की अदालतें होती हैं, उनमें केस लगते हैं, इंसानों की अदालतें, लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, वकील रखते हैं, सजाओं के खौफ से इतना कांपते हैं, सिफारिशें तलाश करते हैं, वीजे लगवाते हैं, बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं, रुपोश हो जाते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं यहाँ की सजाओं से डर के, कितना कुछ करते हैं पकड़े ना जाएं, जेल ना हो जाए, यहाँ की सजाओं से कितना डर लगता है ना। तो उस अहकमुल हाकिमीन की जो सजा है उससे नहीं डर लगता, जहां पे मेरा और आपका केस लगने वाला है कि इस केस का फैसला क्या होगा, उसके लिए नहीं सोचते कि वहां के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए, यहाँ के मुकदमों के लिए इतना पैसा लगाते हैं। लोगों की सारी सारी जिंदगियों की जो जमा पूंजी होती हैं, आपको पता है ना, जिनके मुकदमे होते हैं कैसे लुट जाते हैं, वो लोग मुकदमे ही चलते रहते हैं, कितना लगाते हैं एक एक मुकदमे पे। और यहां पे ऐसा मुकदमा है कि अगर सजा हो गई तो वो सजा है कि इससे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम से सिर्फ इतना पूछेंगे, ए ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? तो ईसा अलैहि सलाम इसके जवाब में बेहोश होकर गिर जाएंगे, जर्रे जर्रे से खून निकलने लगेगा। ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि 40 बरस तक तो वो होश ही नहीं आएगा। ये ईसा अलैहि सलाम वो हैं जो 5 बड़े पैगंबरों में से हैं, उलुल अज़्म पैगंबरों में से, सिर्फ इतने से बोल पे के ईसा तूने कहा था, वो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। वो तो रसूल हैं, मैं और आप रसूल नहीं हैं, वो तो पाक है, मासूम है, और हम तो गुनाहों में लुथड़े में सर से पैर तक। तो हम क्या पेश करेंगे अल्लाह के सामने? इतने से सवाल पे ईसा अलैहि सलाम का ये हाल हो जाएगा, तो जो हमसे सवाल पूछे जाएंगे, जो हमारी पेशी होनी है, हम कैसे फिर गाफिल रह सकते हैं? क्या हमारी हार आने वाली शाम हमें हमारी कब्र के अंधेरों के करीब नहीं कर रही? क्या हर डूबने वाला दिन मेरी जिंदगी की किताब का एक सफा नहीं निकाल के ले जाता? क्या हर आने वाली शाम कब्र की शाम को करीब नहीं ला रही? हर आने वाली घड़ी हर आने वाला घंटा मुझे आखिरत के करीब नहीं कर रहा, और मैं रोकना चाहूं मैं नहीं रोक सकती। आपको मदद के लिए पुकारूं, आप सारे मेरी हेल्प करें, कोई नहीं रोक सकता इस वक्त को, वक्त की सुइयां जो चल रही हैं। हम एक दूसरे की नहीं मदद कर सकते, रोएं चिल्लाएं रहम की भीख मांगे, फिर भी कोई हमारी मदद को नहीं आ सकता। हम तेजी से बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से ये दिन गुजर रहे हैं ना, उतनी ही तेजी से हम अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं। फिर भी वो कौन सी गफलत है, कौन से ऐसे गफलत के पर्दे पड़े में कि हमें होश नहीं आता। फिर भी क्यों अल्लाह को राजी करने की फिक्र नहीं हमें लग जाती। ये सारे जो हमारे रिश्ते हैं ना, औलाद के, शोहरों के, ये बहन भाइयों के, ये सारे रिश्ते, ये हमारे साथी नहीं रहेंगे, यही खिलाफ हो जाएंगे। ये जिनके पीछे हम वक्त लगा रहे हैं, और जिन घरों के पीछे, जिन कारोबारों के पीछे, जिन जॉब्स के पीछे, खुद सोचें ये वहां पे कहाँ होंगी। ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे तो अपने घरों को ठंडा करने के लिए हमने एसी लगाए हुए, पंखे चल रहे हैं। किसी ने, चलो गरीब से गरीब भी होगा, उसने भी कोई ना कोई कूलर या पंखे का इंतजाम तो उसने भी किया होगा। अल्लाह, कब्र को ठंडा करने के लिए एक सोचा है आपने? क्या आपने इंतजाम किया है? यहाँ के घरों को हमने रोशन करने के लिए कोई बल्ब लगाए हैं, कोई लाइटें लगाई हुई हैं? कब्र रोशन करने के लिए हमने कितना जोर लगाया, कोई भाग दौड़ की है? मैं लोगों के सामने जलील होने से बच जाऊं, इसके लिए कितना जोर लगाते हैं? मैं बेइज्जत ना हो जाऊं, कहीं रुसवाई ना हो जाए, कहीं किसी को बात करने का मौका ना मिल जाए। कल हशर के मैदान में, यौम तुबल सरायर फमा लहू मिन कुव्वत वला नासिर, वो दिन ना जब तुम्हारे पर्दे चाक हो जाएंगे, सब के सामने वो सारे राज खुल जाएंगे जिनको छुपाए फिरते थे। यहां तो पर्दे अल्लाह ने रखे हुए ना हमारे, वहां पर्दे खोल देगा वो। यहां पे तो दुनिया वालों की नजरों में जलील होने से बचने के लिए हम जोर लगा रहे हैं, वहां सारी कायनात, सारी मखलूक के सामने, जितने इंसान है सब के सामने जलील होने से बचने के लिए कोई इंतजाम किया? जहां पे मौत ही खत्म हो जाएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी, जो भी अंजाम होगा वो फाइनल होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो फाइनल रिजल्ट है, उसमें पास होने के लिए कुछ किया है उस दिन के लिए, जब अल्लाह ताला जन्नत वालों से पूछेगा या अहलल जन्ना, और दोजख वालों से पूछेगा या अहलल नार, वो दोनों सार उठाएंगे। अल्लाह ताला जन्नत वालों से कहेगा, कम लबिस तुम फिल अर्द अदद सिनीन, कितना तुम दुनिया में रहे? वो कहेंगे, यौमन औ बात है यौम, या अल्लाह एक दिन रहे होंगे या एक दिन का कुछ हिस्सा, इससे ज्यादा तो नहीं हम रहे। ये नहीं कहेंगे 60 साल रहे थे, 70 साल रहे थे, कोई ये भी नहीं कहेगा 1000 साल रहा था मैं, कहेंगे अल्लाह दिन का कुछ हिस्सा रहे थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे, तुमने बड़ा खरा सौदा किया, तुमने आधे दिन की बस तकलीफ तर बर्दाश्त करके मेरी जन्नत को पा लिया, मेरी रहमत को पा लिया, मेरी मेहमान नवाजी को ले लिया, जाओ मरे मज़े करो, अब ना तुम्हारे पीछे अब मौत है, ना कोई बुढ़ापा है, ना गम है, ना परेशानी आएगी, ना दुख आएगा, तुम्हें आज़ादी मिल गई। कहते हैं अगर क़यामत के दिन मौत होती ना, तो ये खुशी से मर जाते, इतने खुश होंगे। ओहो, फिर जानने वालों को जो अल्लाह ने पुकारा है ना, फिर अल्लाह ताला कहेंगे उनसे भी यही बात, कितना रहे थे तुम दुनिया में, कहेंगे यौमन औपात यौ। अच्छा जब ये इनसे इनको पुकार दी जाएगी ना खुशी से, अल्लाह अकबर, सर निकालेंगे पता नहीं अब हमारे लिए कोई कोई वो कहेंगे कोई खुशखबरी पता नहीं आने लगी है। जन्नत वाले भी सहम जाएंगे पता नहीं हमें जन्नत से तो नहीं निकाला जाने लगा। इनसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ वो बंदो वो औरतो वो मर्दो बताओ कितनी देर रहे, कहेंगे अल्लाह एक दिन का कुछ हिस्सा बस रहेगा तो हम तो ज्यादा रहे ही नहीं दुनिया में, मुझे जिंदगी तो पता ही नहीं चला, आधी तो गुजर गई इसी तरह बचपन में जवानी में, कुछ जवानी कभी नहीं पता चला फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, कुछ बीमारी में दिन कट गए कुछ गमों में परेशानियों में कट गए, फिर बुढ़ापे ने आ लिया और पता ही नहीं चला कब मौत आके भी ले गई, हमें तो पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा इतनी थोड़ी देर रहे, तुमने कितना खोटा सौदा किया कितना गलत सौदा किया, सिर्फ 4 दिन के नाच गाने की खातिर तुमने मेरे अजाबों को मेरी आग को खरीद लिया, जाओ तुमको भी यहीं रहना, तुम खुशियां भूल जाओ अब राहतें भूल जाओ अब जवानियां भूल जाओ, आज मौत को भी मौत आ गई मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, जाओ चले जाओ अब चीखो चिल्लाओ, तुम्हारा चीखना तुम्हारा चिल्लाना या तुम्हारा सब्र करना सब बराबर है, अब मेरे दरवाजे तुम पे बंद है, मौत तो को तो अब ज़िबा कर दिया गया, अब अगर उस दिन मौत होती तो ये गम से मर जाते। सोचे ये दुनिया के घर तो छूट जाने हैं, ये तो यहीं रह जाने हैं, वो आखरत का घर तो छूटने वाला नहीं है, यहाँ तो अच्छे अच्छे घर बना के हम बैठ गए हैं ये तो छूट ही जाने हैं, ये रहेंगे नहीं इनको छोड़ के जाना है, इर्द गिर्द नहीं अपने देख रहे कितने लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं घर खड़े हुए हैं औलादे हैं और औलादों की औलादे हैं जिनके साथ वो दिल लगा सकते थे, जाने का नहीं किसी को दिल जाता लेकिन आपने देखा सब छोड़ के चले गए। हम ऐसे के लिए वक्त लगा रहे हैं ऐसे के लिए सारा दिन गुजार रहे हैं जिसको छोड़ के चले जाना, इसीलिए तो महमूद गजनवी ने महल बनाया था बड़ा आलीशान बहुत आलीशान महल बनाया, बाप को बुलाया कहा अब्बा जान मैंने घर बनाया जरा आप आके देखें, उसके वालिद जो थे बड़े नेक इंसान थे, वो आए महल को देखा उसके नक्शो निगार बड़ा खूबसूरत सब कुछ बड़ा हसीन लेकिन एक लफ्ज़ नहीं कहा कि कितना खूबसूरत है कितना आलीशान, महमूद जो था दिल ही दिल में बड़े गुस्से में था कि मेरा बाप कितना बेजौक है, एक लफ्ज़ नहीं इसने तारीफ का कहा, खामोश रहे जब बाहर निकलने लगे अपने खंजर को निकाला दीवार पे जो ऐसा जोर से मारा दीवार पे जो नक्शो निगार था वो सारे टूट के गिरने लगे, कहने लगा बेटा तूने ऐसी चीज़ पे मेहनत की है जो एक खंजर की नोक बर्दाश्त नहीं कर सकी, तुझे अल्लाह ने इसलिए तो नहीं पैदा किया था कि तू इस मट्टी गारे को खूबसूरत बनाने में अपनी जिंदगी गुजार दे, तो हम वाकई यही कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला चाहते हैं तुम मुझे राजी कर लो तुम मुझे खुश कर लो तो फिर मैं तुम्हें ऐसे घर दे दूंगा ऐसे घर दूंगा जिन्होंने कभी टूटना नहीं कभी खत्म नहीं होना, ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें बुढ़ापा ही नहीं है जिसमें कोई मौत नहीं है, ऐसा रिस्क दूंगा जिसके बाद फकर का कोई डर नहीं है, ऐसी सेहत दूंगा जिसके बाद कोई बीमारी ही नहीं है, मैं तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाऊंगा, यहाँ पे हम लिबास भी आलीशान पहनना चाहते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत का लिबास पहनाऊंगा, यहाँ पे जेवर पहनना चाहते हैं ना, अल्लाह ताला कहेंगे कहते हैं ऐसा जेवर पहनाऊंगा, एक फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया वो बैठा जेवर ही बना रहा है, जिस दिन मरेगा जेवर बनाता मनाता ही मरेगा। और ये जेवर किसके लिए है? जन्नत वालों के लिए बना रहा है। अल्लाह ताला ने उसको इसी काम में लगाया है। मेरे बंदे आएंगे जिन्होंने मेरी इताअत का जेवर पहना होगा, मैं उनको ये जन्नत का जेवर पहनाऊंगा। जिस जिंदगी को हम यहाँ तलाश कर रहे हैं ना, ये वहां है। लेकिन हम जल्दी चाहते हैं, जल्दी मिलने वाली। हम ये चाहते हैं सदा की जिंदगी मिल जाए, यही यही जन्नत बन जाए। ये जन्नत नहीं बन सकती। हमने अपनी इतनी जिंदगी तो गुजार दी भूल के, नादानियों में, जिहालत में। इतने रमजान ऐसे ही गुजर गए। बहुत रमजान इसी तरह के गुजारे हैं कि पता नहीं रोजे थे कि फाके थे वो। तो चलो अब जरा जो रमजान अल्लाह ने ये दिया है कि कुछ थोड़ा सा शऊर आया, तो ठीक है, वो रमजान वैसे गुजार के देखे थे। अब इस रमजान में अल्लाह के सामने खड़े होने की लज्जत को चखें। ये वो लज्जत है जिसके सामने सारी लज्जतें खत्म हो जाती हैं। जरा अल्लाह की खातिर नजर झुकाने की लज्जत को सोचें। नजर उठाने की तो हमने बहुत दफा जिंदगी में देख लिया कि उसमें क्या मजा है। बेहयाई को देखना, उसको तो हमने चखा ही हुआ उस लज्जत को, वो क्या थी। अब जरा हम पाकदामनी की भी लज्जत चख लें। बेपर्दगी में तो जिंदगी गुजारी, अब जरा पर्दे में आके उस लज्जत को भी चखें। लोगों के सामने चापलूसियां करना, उनके आगे पीछे होना, ये तो हमने सीखा है, ये तो बहुत कर लिया। अब अपने रब की खुशामद करके उसके सामने माथे को टिकाने की लज्जत को भी देखें। तो इस रमजान में ऐसे होना है कि अल्लाह ताला फखर करें अपने फरिश्तों पे। ये देखो, ये वो इंसान है जिसके लिए तुम कहते थे कि ये खून रेजियां करेगा, ये नाफरमानियां करेगा, अल्लाह आप इंसान को बना रहे हैं। ये देखो फरिश्तों, देखो ये मेरे सामने कैसे सर झुकाए हुए, कैसे तड़प रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे मचल रहा है। तो वाकई ये महीना, जैसे हदीस में भी आता है, अल्लाह ताला देखते हैं अपने बंदों के आमाल को और फरिश्तों पे फखर फरमाते हैं। तो ऐसे बनना है कि अल्लाह ताला फखर करें फरिश्तों में, हमारा जिक्र करें। इसलिए अपने आप को इस लज्जत से आशना करें। आज तक नहीं ये लज्जत चखी तो अब चखाएं अपने आप को, अब देखें, अब इसका मजा लें। जिन्होंने मजे लिए फिर उनको तो और मजे ही भूल गए। आप देख लें जो हमसे पहले गुजरे हैं लोग, एक ताबी थे हबीब इब्ने उमेर, वो कैद हो गए थे। उन्होंने काफिरों के दुश्मनों के 10 आदमी उन्होंने कत्ल, 10 में से 9 आदमी कत्ल किए थे। इनको पकड़ लिया उसने, ईसाई सरदार ने, कहने लगा मैं गुलाम बनाऊंगा, अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा, तुझे अपनी रियासत भी दे दूंगा, वरना तू मेरा गुलाम रहेगा। उन्होंने फरमाया तू सारा जहान भी दे दे, ये नहीं कर सकता। उसने अपनी बेटी को भेज दिया इनके पास बदकारी के लिए, कि इसको अपनी तरफ मायल कर ले, औरत के फितने में पड़ेगा, खुद ही सारा इस्लाम और सब भूल जाएगा। अब ये जवान भी हैं, कुव्वत ताकत भी है, कैद खाने में है, वहाँ पे तीसरा है भी कोई और नहीं, सारी रुकावटें ख़त्म है ना, और औरत खुद दावत दे रही है। और ये है कि अपनी नज़रें झुकाए हुए, उनको पाकदामनी की लज्जत का पता है ना। नजर उठने नहीं दी। उसने बड़ी कोशिश की, औरत ने अपने हुस्न का हर तीर आजमाया, लेकिन इन्होंने नजर नहीं उठाई। आखिर 3 दिन के बाद उसने हथियार डाल दिए। कहने लगी, ये क्या बंदा है, तुझे कौन रोकता है कि आज तीसरा दिन ना तूने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। रोकने वाला कौन है? उसने कहा, मुझे रोकने वाला वो है जो ला तअख़ुज़ुहू सिनतुन वला नौम, जो ना सोता है ना ऊँघता है, जो मुझसे गाफिल नहीं है। मैं उससे गाफिल हो जाऊँ तो हो जाऊँ, वो मुझसे गाफिल नहीं है। वो मेरा रब है जो अर्श पे बैठा हुआ मुझे देख रहा है। ये वो लोग थे अकेले में भी डरा करते थे, जहां पे कोई नहीं है वहां पे भी खुदा का खौफ रखते थे। तो जब इंसान को वाकई पाकदामनी की लज्जत मिल जाती है ना, तो फिर वो लोगों के सामने है या अकेले में है, वो किसी की खातिर नहीं नेकी इख्तियार करता, वो उस रब की खातिर सीधा रहता है जो हर जगह उसके ऊपर निगरान है। फिर देखें मुसब बिन उमैर जैसे साहबी मदीना में, पता है कितने मालदार आदमी के बेटे थे। उस जमाने में 300 दिरहम का जोड़ा पहनना किसी के लिए मुमकिन नहीं होता था। ये 300 दिरहम का जोड़ा पहनते थे। इनके जोड़े कहीं और मुल्कों से, जैसे हम इम्पोर्टेड पहनते हैं, इनके इम्पोर्ट होते थे, इम्पोर्टेड पहना करते थे। और खुशबू ऐसी लगाते थे जहां से गुजर जाते थे ना, लोगों को पता चल रहता था मुसब यहाँ से गुजरा है। नौजवान थे, माल भी था, जब मुसलमान हो गए माँ बाप ने निकाल बाहर किया। ना कोई माल, ना कोई कोई चीज नहीं रही इनके पास। मदीना आ गए तो आपकी महफिल के सामने से गुजरे, टाट पहना हुआ था, उसमें भी चमड़े का पैबंद था, टाट भी पूरा नहीं था इनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपने फरमाया, देखो इस नौजवान को, मक्का में था तो ऐसा था, आज इसका क्या हाल हो गया। जिन लोगों ने इस्लाम की लज्जत चख ली ना, तो फिर उनको कोई चीज उनके सामने बड़ी नहीं रह जाती। ये इस्लाम की लज्जत है, ये इस दीन की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम सुबह जोड़ा बदलोगे और शाम जोड़ा बदलोगे। खाने की एक किस्म दस्तरखान पे आएगी, वो उठेगी तो दूसरी लाई जाएगी। सोचती हूँ हमारे बारे में ही कह रहे होंगे, सुबह एक जोड़ा, रात को नाइट सूट अलग है, शाम के अलग कपड़े हैं, दस्तरखान पे पहले एपिटाइजर आ रहा है, फिर खाना आ रहा है, फिर डिजर्ट आ रहा है। एक उठेगी तो दूसरी लाई जाएगी, वो उठेगी तो तीसरी लाई जाएगी। तुम अपने घरों में पर्दे ऐसे लटकाओगे जैसे बैतुल्लाह को पर्दों से ढांपा जाएगा, इतने यानी कीमती पर्दे लटकाओगे। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? तो सहाबा बड़े खुश हुए, कहने लगे, या रसूल्ला फिर तो बड़े मज़े होंगे, फिर सारी मेहनत ही ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। कितने मासूम थे ना वह, कहते फिर हम अल्लाह अल्लाह किया करेंगे, फिर तो कोई मेहनत ही नहीं है। आपने फरमाया, नहीं, भलाई तो आज ही है, जब वो वक्त आएगा तो तुम पर दुनिया खुलेगी, तो तुम आपस में टकराओगे, माल की हविस में एक दूसरे की गर्दनें काटोगे। वाकई सही नहीं फरमाया था? आज कितनी फरामानी भी है, मगर वक्त ही नहीं है कि अल्लाह के लिए निकालें, वक्त ही नहीं कि लज्जतें चखें। कि पाकदामनी क्या होती है, इसकी लज्जत क्या है, अल्लाह की फरमा बरदारी की लज्जत क्या है, उसमें कैसा मज़ा है, अल्लाह के सामने झुकने में कैसा मज़ा है, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहने में कैसा मज़ा है, अल्लाह के लिए रात को उठ के उसके सामने खड़े होने में कैसा मज़ा है, अल्लाह के कुरान में कैसा मज़ा है, अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी देने में कैसा मज़ा है। ये तो मज़े ही भूल गए, पता जो नहीं है, कभी चखा ही नहीं है मजा। तो काश इस मजे को चखा होता तो मालूम होता कि इससे ज्यादा कोई चीज मीठी नहीं है। हमारा हाल तो वो हो चुका है जैसे एक भंगी था, वो इत्र वाले की दुकान के आगे से गुजरा तो बेहोश होके गिर पड़ा। खुशबू का जो उसके ऊपर आई ना एकदम, तो बेहोश होके गिर गया। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा भाई हो बेहोश हो गया, कोई जाओ गुलाब का अर्क लेकर आओ, कोई खमीरा खिलाओ, कोई ये करो। एक भंगी और गुजरा, उसने कहा ये तो मेरी बिरादरी का है। उसने कहा अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या खबर है, पीछे हटो, थोड़ी सी ऐसा करो गंदगी उठा के ले आओ, इसके नाक को लगाओ, उससे ये ठीक होगा, ये इतर वगैरह से नहीं होना। इस बंदे ने वाकई, वो लोगों ने लाके उसको लगाई, उसने सूंघी तो होश को के होश करके बैठ गया। आज ये हमारा हाल है, जन्नत की बातें भूल गए, कुरान की बातें भूल गए, अपने आप को गंदगी में इतना डबो दिया, इतने उसके अंदर महव हो गए कि आज हमारा टेस्ट ही वो बन गया। कभी वो भी वक्त था ना कि लोगों के सर कुरान पे हिला करते थे, कभी वो भी वक्त था कि लोगों के आंसू कुरान सुनने पे बह जाया करते थे। आज शैतान ने ऐसा बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो हम उस भंगी की तरह हो गए जो गंदगी का आदी है, उसको इतर सुंघाए उसको पता ही नहीं है। इतना अपने आप को हराम का आदी कर दिया है कि जन्नत की बातें उसके किस्से वो हमारे सामने कोई बड़ी चीज ही नहीं रह गए। यहाँ अपनी आंखों को बेहयाई का इतना आदी बना दिया, अल्लाह के दीदार का कोई शौक ही नहीं रह गया। दुनिया कोई जन्नत बनाने की इतने फिक्र में है, उस जन्नत की कहाँ होश है। तो ये हमारा टेस्ट बन गया। लेकिन इस रमजान में हमने अपने यही टेस्ट बदलने और फिर इनको बरकरार रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला अपने आप को ऐसा आदी बनाना है, ऐसे खासुल खास वाले रोज़े रखने हैं, ऐसी खुशू वाली नमाज़ें पढ़नी हैं, खुद को ऐसे बुराइयों से बचाना है, इंशाअल्लाह इसका आदी बनाना है कि हमें इनमें मज़ा आने लगे, इनमें लज्जत आने लगे, ये बोझ ना लगे। वो गंदगियाँ आज बोझ नहीं लगती, हालांकि वो बोझ है, ये बोझ लगता है कि हाय ये सुनना पड़ गया, हाय खड़े होना पड़ गया, हाय ऐसे हो, बोझ तो ये है जो गुनाह है। तो इंशाल्लाह अपने आप को बिल्कुल जो जिससे अल्लाह ताला राजी होता है उसका आदी बना लेना कोशिश के साथ। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, अमल करना आसान कर दे। अल्लाह हमें अपने जिक्र में, अपनी इबादत में, इसमें हमारे लिए लज़्ज़त पैदा फरमा दे। वज़ू के ऊपर हमने बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा बावजू रहो तो तुम्हारे ये दोनों मुहाफिज फरिश्ते तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। सुभान अल्लाह, ये जो मुहाफिज फरिश्ते हैं ना, ये मोहब्बत करने लगते हैं अगर इंसान बावजू रहता है हमेशा। इसी तरह नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डालिए बगैर बातचीत किए हुए, क्योंकि एक हदीस में है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, मौत के सिवा कोई चीज़ इसके और जन्नत के दरमियान हायल नहीं है। मौत के बाद फौरन ही इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन यह हर एक को नसीब नहीं होती। लोग सलाम फेरते ही बात करने लगते हैं, आयतल कुर्सी पढ़े बगैर ना बात करें। अगर आपको एक नेकी करने का मौका मिल जाए, ये नेकी वो है जिससे इंसान को बख्शिश हासिल होती है। क्या है वो नेकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मैयत को गुसल दिया फिर इसको कफन पहनाया, अल्लाह ताला 40 दफ़ा उसको बख्श देते हैं, 40 दफ़ा। और जिसने कफन दिया, अल्लाह ताला जन्नत में उसे दीपा और रेशम का लिबास पहनाएगा, और जिसने मैयत के लिए कब्र खोदी और उसमें दफन कर दिया, तो अल्लाह ताला उसे इतना अजर अता फरमाएगा जितना उस शख्स को अजर देगा जिसने किसी के लिए क़यामत तक के लिए रहाइश का इंतज़ाम कर दिया। क़यामत तक के लिए उसने किसी को ज़मीन दे दी, मकान बनवा दिया ना, क़यामत तक के लिए जितना उस बंदे को अजर मिलेगा उतना इसको मिलेगा। तो आप शायद कब्र नहीं भी खुदवा सकते, किसी के कब्र यहाँ पे तो ख़रीदी जाती है ना, कई लोग ऐसे होते नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनकी कब्र दिलाने के लिए अगर उसमें पैसे डाल सकते हो ज़रूर डालें। किसी को कफ़न देने के लिए ज़रूर इस नेकी में शामिल हों कि किसी को कफ़न आप दें। आज का जो जिक्र है वो है सैयदुल इस्तग़फ़ार जिसको हम कहते हैं। इस्तग़फ़ार वैसे भी हदीस में ये आया कि जो चाहता है कि क़यामत के दिन उसका आमाल नामा उसको सुरखरू कर दे, यानी वो कामयाब हो जाए ना क़यामत के दिन, उसके आमाल नामे में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? इस्तग़फ़ार सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको लंबी चौड़ी नहीं भी दुआएं आती, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तो कर सकते हैं ना, गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो ये जो सैयदुल इस्तग़फ़ार है ना, आपको वैसे मसनून दुआओं की तमाम ही किताबों में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया था, जिसने दिन के वक्त यकीन के साथ एतमाद के साथ ये कलमात पढ़े, फिर इसी दिन वो शाम से पहले अगर फौत हो गया तो जन्नत वालों में से है, और जिसने रात के वक्त यकीन के साथ एतमाद के साथ ये कलमात पढ़े फिर सुबह होने से पहले अगर फौत हो गया तो वो अहले जन्नत में से है। तो ये सब बख्शिशों की सरदार है सैयदुल इस्तग़फ़ार, इसलिए इसको कहते हैं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्री मा सनातु अबू लका बि निअमतिका अलैया व अबू बि ज़म्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। क्या माना है? ए अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई रब नहीं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी, तूने मुझे पैदा किया, तू मेरा खालिक है। वा अना अब्दुका, मैं तेरा बंदा हूँ। वा अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, और जो मैंने तेरे साथ अहद किया इस पे मैं अपनी ताकत के मुताबिक ला कायम हूँ। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, अल्लाह मैं हर उस शर से तेरी पनाह में आती हूँ जो मुझसे सरज़द हो गया, जो मैंने खुद किया। अबू लक बि निअमतिका अलैया, ए अल्लाह मैं हर उस नेमत का एतराफ़ करती हूँ जो तूने मेरे ऊपर की। वह अबू बि ज़म्बी, ए अल्लाह जो मुझसे गुनाह हुए मैं उनको भी मानती हूँ। फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह बस तू मुझे माफ़ कर दे। वह इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई नहीं माफ़ कर सकता। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, इसको सुबह भी और शाम भी पढ़ें। आज का जो जिक्र है वो इतना ज़बरदस्त है कि इसके बारे में आता है कि इस जिक्र के लिए आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, ये इतना ज़बरदस्त जिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा एक आदमी नमाज में उसने ये कलिमात पढ़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये किसने कहे? उस आदमी ने कहा कि मैंने कहे। आपने फरमाया मैं हैरान हूँ कि इन कलिमात के लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए। वो क्या हैं कलिमात? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरतन व असीला। ठीक है, ये कलिमात बहुत आसान भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस जिक्र को आज आप जारी रखेंगे, और कुरान की तिलावत उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। देखें, कुरान पाक की तिलावत करने वालों को, इसके साथ ताल्लुक़ रखने वालों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे अहल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला के बड़े ख़ास लोग हैं, उसके अहल हैं, साहबा ने अर्ज किया, या रसूल्ला वो कौन है? आपने फरमाया कुरान वाले, जिन्होंने अपना ताल्लुक कुरान से रखा हुआ ना, ये हैं अल्लाह ताला की आल। तो कुरान वाले बने इस रमजान में, इसकी आदत बनाए और इंशाल्लाह इसको छोड़ना नहीं है, फिर हम इसी तरह कुरान को पढ़ने वाले रहें। हम अत्तहियात का तर्जुमा देख रहे थे, हमने आधा देख लिया था, अब आगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस्सलामु अलैना यानी सलाम हम पे, तो गोया आप नमाज में अपने ऊपर भी सलाम भेज रहे हैं, व अला और ऊपर इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों पे जो सालिहीन है, नेक है, अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर भी सलाम हो। तो अत्तहियात पढ़ने में ना कितनी बातें हैं जो अगर आप समझ के पढ़ें तो वाकई अपने लिए भी भलाई है, और कितना आप सलाम भी भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और आगे हम देखेंगे जो कलमा पढ़ते हैं वो इस पे आगे आता है। आज सदका दें मुस्कुराहट का, मुस्कुराना भी सदका है, तो इंशाल्लाह ताला मुस्कुराहट बिखेरने का सदका दीजिए। वैसे भी इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, और मुफ्त की नेकियां हैं ये, तो ये इसके लिए तो कोई आपके फीस नहीं लगती, कोई आपको लंबा चौड़ा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुस्कुराना तो कितना आसान काम है, लेकिन सिर्फ एक मुस्कुराहट पे आपका एक सदका काउंट हो जाता है। और नरमी का मामला करें, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर ना दूं जो जहन्नुम की आग पे, और जहन्नुम की आग उनके ऊपर हराम है। वो लोग कौन है जो एक्सेसिबल हैं, करीब रहने वाले लोगों के करीब हैं यानी, और दूसरे नरमी वाले, जेंटल और इजी गोइंग। तो इंशाल्लाह आप नरमी तो इख्तियार कर सकते हैं ना, नरमी पे भी कोई पैसे नहीं लगते, कोई मेहनत नहीं है, तो नरमी इख्तियार करें, लोगों के लिए जेंटल बने और इजी गोइंग हो। टेक इट इजी ऑन पीपल, हार्श ना बने, सख्त ना बने, मुश्किल ना बने, इजी गोइंग। तो इंशाल्लाह ऐसे शख्स के ऊपर हराम, जहन्नुम उसके ऊपर हराम और वो जहन्नुम पे हराम है, बिल्कुल कोई ऐसा इंसान जहन्नुम में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तीन क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करनी है, एक एक करके इंशाल्लाह ताला इनको आप कोशिश के साथ इंशाल्लाह अपने अंदर पैदा करें। और आसान ही है, अगर एक दफ़ा ये आदत बन गई तो बहुत कामयाबी है इसमें। अल्लाह ताला हम सब के लिए अमल करना आसान फरमा दे, और हमारे क़याम और सियाम को कबूल फरमाए। जो बात कही जाती है अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दे, और ये सारे काम हमारे लिए हमारी आदत बना दे या अल्लाह, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। आज इंशाअल्लाह ताला आपने एक चीज़ और ऐसी है जिसका आज आपने शुक्र अदा करना है, ख़ास तौर पे इसको याद रखना है, वो अपनी आज़ादी की नेमत है। ठीक है, उस पर गौर करिएगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।